ओम शांति।
आज का जो हमारा विषय है वो है डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी। आप सभी कॉरपोरेट्स में काम करने वाले हैं, आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में आज डिमांड किसकी है, लीडर्स की या मैनेजर की? लीडर्स की। ऑफ कोर्स लीडर भी एक मैनेजर ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटी हो, लीडर में मैनेजर वाली क्वालिटीज हैं। तो समय चेंज हो गया है, मैनेजमेंट में भी मैनेजर का रोल चेंज हुआ है। तो आज हम देखते हैं पहले मैनेजमेंट में अमेरिकन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट था, दैट वाज कम विद योर हैंड्स वी शैल गिव आवर हेड्स टू यू। आपके जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसका आप इस्तेमाल करें। जहां तक ब्रेन है या डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमारी काम करेगी। तो उसमें एक हायरार्की होती थी और उसके बाद फिर जैपनीज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट शुरू हुआ। दिस वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेड्स एंड हार्ट, कम विद योर हेड्स। हेड ऑल्सो, दिस वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड्स एंड हेड। इसका मतलब यह है कि आप अपने रिसोर्सेज, टैलेंट्स जो है उसका इस्तेमाल तो करें, लेकिन आपके अगर ब्रेन की कोई क्रिएटिविटी है, कोई रचनात्मक आइडियाज आपके पास हैं, वो भी आप जरूर बताएं, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन देखने में आया कि आज और मैनेजमेंट में कोई चीज की, तो विच इज द मिसिंग डायमेंशन मॉडर्न मैनेजमेंट, वो है हार्ट। ब्रह्मा कुमारी को इसमें आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम इस बात पे फोकस करते हैं, हाउ टू पुट द हार्ट इन टू द बिजनेस, हाउ टू पुट द सोल इन टू द बिजनेस। जब तक आप दिल से कोई कार्य नहीं करेंगे, उस कार्य में आपको 100% सफलता नहीं मिलेगी। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, 3H का कॉम्बिनेशन है, हैंड्स, हेड्स एंड हार्ट। और इसके लिए हमें अपने अंदर से आई हैव टू वर्क फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, क्योंकि मुझे अपने इंस्टीट्यूशन के लोगों को भी देखना होगा कि उनके अंदर में क्या बीत रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जो आपके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच नहीं करती है, दैट मे बी द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन आपका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज हैं, बहुत अच्छे उनके पास आइडियाज हैं, आंसर्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो आकर के आपको बताते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी संस्था के साथ काम करें, कल्चर के साथ। अब इसके लिए हमें फिर अपनी जो आंतरिक क्षमताएं हैं उसको उजागर करना जरूरी है और मुझे अपने आप पर वर्क करना जरूरी है। जैसे कि आपने, आपको हमने पहले बताया था कि ब्रह्मा कुमारी में सेल्फ मैनेजमेंट पर जोर दिया जाता है। अगर हमने अपने आप को मैनेज कर लिया तो हम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर लेंगे, हम सोसाइटी को मैनेज कर लेंगे, हम अपनी फैमिली को मैनेज कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है? एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल्फ। जब भी हम डिस्टरबेंस फील करते हैं, कोई भी, हम और आप सब मिलाकर के, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, उसमें हम डिस्टरबेंस फील करते हैं, इसमें मन की ट्यूनिंग जरूरी है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अगर एयर कंडीशनिंग रूम में बैठे हैं तो बाहर का वातावरण कुछ भी हो, तापमान कुछ भी, अंदर आने के बाद क्योंकि आपने रूम की कंडीशनिंग करा रखी है तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, बाहर का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। ठीक वैसे हम एक मन को ट्यून कर लें, परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन मैं मन से कभी डिस्टर्ब ना हो जाऊं, और परिस्थितियां तो आएंगी ही, और ना मुझे डिस्टर्ब होना है, अपनी टीम को भी मोटिवेट करना है, चेंज करना है। मोटिवेशन का मतलब इंसेंटिव्स के बेसिस पे नहीं, एटीट्यूडनल चेंज, उसके लिए थोड़े हमारे सेशंस हैं। तो आज हम शुरू करेंगे द चेंजिंग रोल ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर के क्या क्या रोल चेंज हुए हैं वो आपको बताएं। इन दिस सेशन वी विल फोकस ऑन व्हाई द ओल्ड मेथड्स ऑफ मैनेजिंग पीपल आर नो लॉन्गर सुटेबल, क्लैरिफाई व्हाट चेंजेस इन मैनेजमेंट स्टाइल्स आर रिक्वायर्ड, identify the activities and attitudes of an effective manager, identify the personal abilities and powers needed to adopt this new style of managing people. इन बातों पे हम फोकस करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट में काफी चेंजेस आए हैं, न्यू मैनेजमेंट ट्रेड्स एंड प्रैक्टिस की बातें मैनेजमेंट से आउट हुई हैं और कौन सी हमें प्रैक्टिस में लानी है। पहले हम सोचते थे अ पर्सन शुड बी मल्टी स्किल्ड, लेकिन आज कहते हैं देयर मस्ट बी जनरल प्रैक्टिस। पहले इंस्टेंट कोई भी काम चाहते थे, आज कॉन्स्टेंट, राइट, एवरीथिंग शुड बी कॉन्स्टेंट, इंस्टेंट नहीं। हैंडलिंग फैक्टर को बहुत अच्छा माना जाता था, हम मानते थे कि इसकी हैंडलिंग बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है ये, बड़ा इसकी टेक्निक्स बड़ी अच्छी है, ये पता नहीं कैसे सबको हैंडल करता है। लेकिन आज के जमाने में लोग कहते हैं हु आर यू टू हैंडल मी, आप कौन होते हैं मुझे चलाने वाले, देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब तक अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल नहीं है तो काम नहीं होगा। पहले एफिशिएंसी लेवल देखा जाता था, आज इफेक्टिवनेस, पहले कैपेबिलिटी, भाई द पर्सन इज कैपेबल इनफ। लेकिन आज कहते हैं कैपेबिलिटी तो ठीक है भाई, बहुतों में होती है, आप में कोपिंग एबिलिटी कितनी है, जब आप क्योस में होते हैं, जब आपको स्ट्रेस होता है, जब चारों तरफ से प्रेशर्स आते हैं, आप में कोपिंग एबिलिटी कितनी है। फिर एक्सपीरियंस, पहले कहते थे भी इनका एक्सपीरियंस कई सालों का है, कहते हमें उससे क्या लेना, आप ये बताइए आपका एक्सपोजर कहाँ कहाँ हुआ है, चेंज हो गया कि नहीं हुआ, राइट। पहले मोटिवेशन की बात आती थी, भाई लोगों को मोटिवेट करो, सेल्फ को मोटिवेट करो, लेकिन आज सेल्फ मोटिवेशन, हम तो मोटिवेट तब करेंगे किसी को जब हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर हम में मोटिवेशन नहीं है तो हम दूसरे को भी नहीं दे सकते। फिर क्वालिटी सर्कल्स की बात आती है, अभी है क्वालिटी कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल पे आप में क्वालिटी आए। देन वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअस रियलिटी, हाई टेक, अभी हाई टच। अभी आप देखो इफ्को में या कहीं भी संस्था में चले जाओ, टेक्नोलॉजी वाइज सभी साउंड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन हम सभी आध्यात्मिक संस्थाओं की तरफ क्यों आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हाई टच। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, और आज क्या है, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, क्योंकि जहां राष्ट्रीय एकता की बात आती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है, वहां इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी काम करती है।
फिर आती है पहले IQ, फिर EQ देखा गया, अब MQ, इसके बाद अब जो लेटेस्ट है दैट इज SQ. SQ मतलब स्पिरिचुअल कोशेंट, क्योंकि हम में अगर मॉरल कोशेंट भी और बढ़ेगा, उसका आधार भी स्पिरिचुअल कोशेंट है. कितना भी आप मॉरलिटी की बातें करें, नैतिकता की बात करें, लोग कहने के लिए कह देते हैं पर लिटरली कर नहीं पाते हैं. जब अध्यात्म का समावेश हो जाता है तो उनके अंदर से आता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें वैल्यूज के साथ चलना चाहिए. राइट. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर इफेक्टिव लीडरशिप. यू मे नॉट बी एबल टू चेंज. इसमें ये है कि डिफरेंट परिस्थितियां बताई हैं. यू मे नॉट बी एबल टू चेंज योर पास्ट, द ट्रैफिक, द वेदर, द मार्केट फोर्सेस, व्हाट अदर्स डू, द बॉस एटीट्यूड, व्हाट अदर पीपल विल से, इवन यू मे नॉट बी एबल टू चेंज योर डेस्टिनी, बट यू कैन डू समथिंग. What you can do? You can change your attitude towards them. आप अपने attitudinal change के माध्यम से अपने को comfortable रख सकते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पर लगातार बरसात है, कई चेन्नई से आए होंगे, कोई बॉम्बे से आए होंगे, जो वेदर उनको एकदम चेंज मिला होगा, और हो सकता है उनको कोई शरीर में तकलीफ भी हो गई हो, और वो किसी को कहें कि यहाँ का मौसम बड़ा खराब है, बहुत खराब है, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. इसका मतलब मौसम तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन मुझे ये कहना चाहिए कि मौसम तो सबके लिए एक जैसा है, पर मैंने इस मौसम के अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस नहीं लिए. मुझे प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे. तो मुझे अपने एटीट्यूड को चेंज करते ही सब कुछ ठीक हो जाता है. फिर पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर इफेक्टिव लीडरशिप. मैनेजमेंट की लैंग्वेज में दो बातें आती हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? जो मेरे कंट्रोल में है, विच इज विद इन माई कंट्रोल. और सर्कल ऑफ कंसर्न हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे माई वैल्यूज, माई विजन, माई बिलीफ, माई एटीट्यूड, एजम्पशंस, ये मेरे कंट्रोल में है. लेकिन सर्कल ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल टर्मोइल, ग्लोबल कंपटीशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, या फिर इकोनॉमिक रिसेशन. इतना इकोनॉमिक रिसेशन पीछे आ गया था कि अच्छे अच्छे लोग, अच्छा पैकेज लेने वाले घर बैठ गए थे. मेरे पास तो वसंत कुंज में ऐसे एक दो केसेस आए जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई, और एक व्यक्ति तो ऐसा था कि वो इतना सोचते 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 वो हालत आ गई कि डॉक्टर ने कहा अब ये 5 साल के बच्चे की तरह हो गया है, आपको इसे उठा के चलना पड़ेगा. क्या था? इकोनॉमिक रिसेशन. उस वजह से उसको जॉब से कहा गया कि आप नहीं रह सकते. बहुत सारी संस्थाओं में ऐसा हुआ. तो हमें आने वाली टिपिकल सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा, और अगर हम इनके प्रति रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टिव फोकस होने से नेगेटिव एनर्जी हमारी निकलती है, वो एटमॉस्फेयर को दूषित कर देती है. तो वी मस्ट बी प्रोएक्टिव. अगर हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न सर्कल ऑफ कंसर्न के बारे में हम ज्यादा बातचीत ना करें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप देखेंगे ऑफिस में क्या होता है, लंच में भोजन के बाद आधा घंटा गॉसिप करते हैं, और वही आजकल प्रधानमंत्री जी क्या उनके विचार हैं, कुछ उनके प्रति सही बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। फिर परंतु वो जो है ना हमारी समझ में नहीं आया नेता लोग क्या कर रहे हैं। आपने पूरी बात करने के बाद लास्ट में कहा छोड़ो भाई हमें इन लोगों से क्या लेना, अपना काम करो। तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने टाइम कहाँ लगाया सारा है दूसरों के चिंतन में, और फिर नेक्स्ट डे फिर वही रिपीट करेंगे, फिर इकट्ठे होंगे, फिर कोई और मुद्दे पर बात करेंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर इकट्ठे होंगे, फिर बातचीत करेंगे, और लास्ट में कहेंगे छोड़ो भाई क्यों टाइम वेस्ट करना। अरे वेस्ट तो कर लिया आपने टाइम, प्रीशियस टाइम। तो ये हम लोग उस विषय में ज्यादा सोचते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर हमें क्या करना है जिस जो मेरे कंट्रोल में है हम उसको ठीक कर लें। तो सर्कल ऑफ कंसर्न का गैप रिड्यूस हो जाएगा और हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे और हमसे पॉजिटिव वेव्स वाइब्रेट होंगी और एटमॉस्फेयर को चार्ज करेंगी। तो इसलिए इफेक्टिवनेस एंड चेंज वी मस्ट बी प्रोएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि सेशन आपका थोड़ा लंबा है। डिफरेंस बिटवीन ए मैनेजर एंड ए लीडर, अभी आप देखिए जैसे अभी बताया गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? लीडर कैन बी एनीवेयर बट मैनेजर, मैनेजर जो है उसको जो पर्टिकुलर जॉब दी जाती है उससे कंसर्न रहता है, और लीडर कैन बी एनीवेयर। यस एनीवन एल्स? लीडर थोड़ा खड़े होकर बात करेंगे या सिंथेसाइज करते हैं? सिंपैथी है? यस अच्छा, लीडर्स क्या है सिचुएशन को ठीक करते हैं। ओके लीडर्स लीड इन अ परफेक्ट मैनर। थोड़ा माइक देते हैं इनके हाथ में तो मेरे को सुनाई नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप सभी एक्सपीरियंस्ड हैं, सबने ठीक सुनाया। अब हम सुनेंगे कि लीडर और मैनेजर का डिफरेंस क्या है। तो मैनेजर एडमिनिस्टर्स, द लीडर इनोवेट्स। अभी बताया ना कि जो उसे दिया गया केवल उस तक वो सीमित है, बट वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आता है। मैनेजर मेंटेन्स, द लीडर डेवलप्स। The manager relies on systems. The leader relies on people. The manager counts on control. The leader counts on trust. मतलब वो नियंत्रण पात्री है और लीडर विश्वास पात्री है। वो विश्वास पात्र मतलब उसको उसका वो सबके विश्वास को जीतता है। The manager does things right. The leader does the right things. सिंपल सी बात है, मैनेजर को आपने कहा कि यहां सीढ़ी लगा दो इस दीवार पे, उसने आपके कहने से जाके लगा दिया, लेकिन लीडर चेक करता है इज इट ऑन द राइट वॉल। लीडर चेक करेगा, वो देखेगा योग्य स्थान है, नहीं है तो वहां से थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट करेगा। तो ये लीडरशिप क्वालिटी है। अब सबसे बड़ी बात, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं रिक्रूट करते हैं लोगों को वहाँ पे, तो आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो भी उससे रिलेटेड पेपर्स हैं वो देखते हैं। लेकिन एक बार आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद क्या आपकी, आपका जो यानी कि उस संस्था में स्थान या वैल्यू आपके इन्हीं पेपर्स के माध्यम से होगी या उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और भी होंगी? बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि हरेक का वर्किंग स्टाइल, हरेक का एटीट्यूड, पंक्चुअलिटी, लोगों के साथ बिहेवियर सब अलग अलग है, तो वो भी जरूरत है या नहीं है? है। तो ऐसा हम कौन सा एटीट्यूड अपने में धारण करें सो दैट यू कैन प्ले योर रोल वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन? नाउ हम आए हैं एट एटीट्यूड ऑफ अ लीडर। डिसिप्लिन, ओके, पॉजिटिव, एट पॉजिटिव इज अ ब्रॉड एंगल, उसमें बहुत सारे एटीट्यूड्स आ जाते हैं। ही मस्ट बी कोऑपरेटिव, यस, इनोवेटिव आइडियाज हो और फॉरसाइटेडनेस हो, पंक्चुअलिटी हो, यस, एक्सेप्टेंस हो, सिंपैथी हो, एम्पैथी, यस, व्हाट एल्स, गोल ओरिएंटेड, टीम स्पिरिट क्रिएट कर सके, यस, एसर्टिव, आप देखिए जितने भी आपने एटीट्यूड सुनाए, एक तो है हम लोग उस एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे कौन सा एटीट्यूड, सबसे बेसिक एटीट्यूड कौन सा है? वो है पहला, लिसनिंग एबिलिटी। लिसनिंग एबिलिटी, देखो कुदरत की तरफ से भी हमें दो कान मिले हैं और एक मुख मिला है, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? सुनो ज्यादा, और हमें बात सुन के उतनी करनी है जितनी आवश्यकता है, ज्यादा नहीं, है ना? लेकिन कई बार हम दूसरा क्या सुनाना चाह रहा है वो ध्यान से नहीं सुनते, उसके आधे में वो भी शुरू ही करता है तो हम कहते हैं हाँ आपका ये मतलब है ना, आप यही कहना चाहते हैं ना। अरे बेचारा क्या कहना चाहता है, आप प्यार से पहले सुन तो लो। तो लिसनिंग एबिलिटी लीडर की पहली क्वालिटी है। अब सपोज आपके पास पर्सन ए पर्सन बी की कोई कंप्लेंट लेके आया, आपने उसकी बात को ध्यान से सुना, उसके बाद वो व्यक्ति चला गया तो आपके ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ गया, उसके बाद पर्सन बी आपके पास आया, अगर हम बायस्ड हैं, कलर्ड हैं पहली इन्फॉर्मेशन से, तो वो जो व्यक्ति उसके बारे में कुछ बताने आया है वो आप सुन पाएंगे? सुन पाएंगे? आप कहेंगे ओके ओके, आई नो, आगे चलो। आप काम भी करते रहते हैं और साथ में सुनते भी रहते हैं, तो इसका अर्थ यह कि लिसनिंग प्रॉपर नहीं है। हमने एक को सुना लेकिन दूसरे पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा लीडर वो है जो दोनों को सुने। इसलिए लिसनिंग में एक फॉर्मूला हम बोलते हैं SOS, स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। स्टैंड बैक, इस सिचुएशन से थोड़ा सा हट के ऑब्जर्व करो और फिर अपने डिसीजंस को डायरेक्ट करो कि आपको किस डायरेक्शन में अपने डिसीजंस लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया और आप पहली इन्फॉर्मेशन से कलर्ड होके बात करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके लिए आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो एंड देर शुड बी परमानेंट सर्वे ऑफ द सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि एक बार गया व्यक्ति और इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आ गया. तो कई बार लिसनिंग प्रॉपर न होने से किसी के साथ इनजस्टिस भी हो जाता है, और लिसनिंग सही होगी तो हम सबके साथ सही डिसीजंस लेंगे और सबकी दुआएं लेंगे. तो लिसनिंग एबिलिटी बेसिक बात है. अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ व्हाइट बोर्ड नहीं है लेकिन आपके पास राइटिंग पैड्स होंगे. ऑन योर पीस ऑफ पेपर ड्रॉ एन हॉरिजॉन्टल लाइन. ऑन योर पीस ऑफ पेपर ड्रॉ एन हॉरिजॉन्टल लाइन. राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द लाइन. मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ. ड्रॉ एन हॉरिजॉन्टल लाइन. राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द लाइन. जिन्होंने ये एक्सरसाइज पहले की है प्लीज बी कोऑपरेटिव, डोंट इंटरप्ट एंड जस्ट ऑब्जर्व व्हाट अदर्स आर डूइंग. सबने कर लिया? कोई बताना चाहेगा? जिन्होंने नहीं की वो जरा बताएं, मतलब पहले नहीं किया एक्सरसाइज. कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज? यस. हाँ जी, आप बताएं भाई जी. आप? हाँ जी बताइए. आपका नाम? रमेश पारिक. यस. क्या लिखा आपने? फर्स्ट लेटर रमेश पारिक, मतलब आर एंड एच. ओके, रमेश का लिखा, ठीक है. जिन्होंने इस तरीके से लिखा है प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, बहुत अच्छा. जिन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा है वो आप बताइए. एस और लास्ट में वी, ठीक है. आपका भी सेम पैटर्न है. कीप इट विद यू, मैं बताऊंगी. यस. सेम राइट? एनीवन? यस. अच्छा, आपने भी ठीक लिखा लेकिन आपका फर्स्ट नेम सिर्फ मोनिका है ना? भटनागर फर्स्ट नेम नहीं है. ठीक, और कोई? आपका शुभ नाम अजय. क्या लिखा आपने? ए वाई. अच्छा, ए एस. लास्ट में ए एस. अजय नाम है ना आपका, तो अजय में एस कैसे आ गया? अजेश. ओके, ठीक है. आप इनके लिए ताली बजाएं. देखिए इन्फॉर्मेशन क्या थी. Draw an horizontal line, write the first and the last letter on both the ends of the line of your first name. पहले तो first name, उसके बाद first and last इधर alphabet और first and last, दो दो alphabet आएंगे. आपने क्या किया था? हैं? Single लगाया था. अब ये कहां हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हम स्लिप कर गए. क्या कमी रही, क्या रही कमी हा? क्या लिसनिंग एबिलिटी। कई बार हम कहते हैं कि भाई हम लोगों ने सुना, भाई हियरिंग तो आपकी बड़ी अच्छी है लेकिन लिसनिंग थोड़ा और आगे है, और अच्छा बनाना है। ऑब्जर्वेशन कम हुई या इतना माइन्यूटली हमने सोचने की कोशिश नहीं करी, और ये अक्सर करके हमारे कर्म क्षेत्र पे होता ही है, अक्सर करके होता है। और अच्छे अच्छे जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं उनसे भी हो जाता है। क्या नहीं नहीं जिन्होंने अंडरस्टूड नहीं किया था उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने दोबारा से कहा कि आप हमें कम्युनिकेट करें। मैंने दो बार दोबारा से धीरे धीरे कम्युनिकेट किया। दैट मीन अंडरस्टूड, तभी आदमी अंडरस्टैंड कर पाता है जब वो उसे जिस नजरिए से सुनता है वही तो अंडरस्टैंड करेगा ना। एक होता है कि आपने जल्दी जल्दी बोल के आप निकल गए, एक है अगर आपने तीन चार बार पूछा है उसे, आपको प्यार से बताया गया है। अभी अगर हम हर चीज बता देंगे तो फिर लिसनिंग कैसे चेक करेंगे, यहां तो हम नहीं कर पाएंगे ना। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ओके, इन ऑर्डर टू बी ए गुड लिसनर व्हाट एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड? पेशेंस और ओके, दूसरों के नजरिए से भी कुछ समझना होता है। ठीक बात है, बहुत अच्छा फीडबैक, उसकी फीडबैक लें अपने दूसरों से, सामने वाले से फीडबैक लेना तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज इन ऑर्डर टू बी ए गुड लिसनर वी रिक्वायर अवेलेबिलिटी। अगर आप यहां अवेलेबल ही नहीं होंगे तो आप बात को सुनेंगे कैसे? सभी अवेलेबल है, कोई ऐसा तो नहीं है कहीं और हो? कैन वी हैव सम एक्सरसाइज? ओके, अभी इनको हेल्प करो जरा। आपको एक छोटा सा पेपर देते हैं, छोटा सा टेस्ट है, इट इज 2 मिनट, कितना है, 2 मिनट का टेस्ट है। आगे पास ऑन करते जाओ, एक के हाथ में चार चार लाइन दे दो, पास ऑन कर ले। और इसको आप पढ़े नहीं, प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, पढ़ना नहीं है। और जब हम आपको कहेंगे तब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। केवल आप रखिए अपने पास, आगे बढ़ते जाएं, चार चार लोगों को। मेरे ख्याल में बीच में पेपर्स नहीं मिले हैं। अभी एक इधर भी देना। चलो, किन्हीं को नहीं मिला तो हो सकता है आप देखिए। लक्ष्य है कि हमें बात समझ में आ जानी चाहिए। So everybody is ready with the papers? Okay. आप लोग अभी पढ़ना स्टार्ट न करें, जब हम आपको यहां से इंस्ट्रक्शंस देंगे केवल तभी आप स्टार्ट करेंगे। So can we start now? Please start. ये दो मिनट का पेपर है, इसमें कुछ इस तरह की एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। बिल्कुल साइलेंस में, सो दैट आप अपना काम समय पर पूरा कर सको। अगर आप में से किसी ने पहले एक्सरसाइज की है, प्लीज बी कोऑपरेटिव, दूसरे की तरफ नहीं देखें, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन टाइम। One minute has already passed. We only have 1 minute in hand. Now we have 30 seconds in hand. Mentally you must be peaceful so that you can easily complete your test. Now time is over. Time is over. जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो भी अच्छे हैं, जिन्होंने कर लिया है वो भी अच्छे हैं, जो प्रोसेस में चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये देखना है कि हम इस अवेलेबिलिटी को कैसे आगे बढ़ाएं। जिन्होंने कंप्लीट किया है वो जरा हाथ उठाएंगे। यस, हाँ जी भाई जी, आप बताइए। यस, आपने पहले एक्सरसाइज की हुई है, सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी। यस, थैंक यू। आप हैं? यस, आप प्लीज इनके लिए ताली बजाएं। देखिए इसमें लिखा है रीड एवरीथिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग। पहला इंस्ट्रक्शन है रीड एवरीथिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग। और लास्ट में लिखा है सारा पढ़ने के बाद, नाउ दैट यू हैव फिनिश्ड रीडिंग केयरफुली एज इंस्ट्रक्टेड इन सेंटेंस नंबर 1, डू ओनली सेंटेंस नंबर 2। अब सेंटेंस नंबर 2 क्या है? Write your name in the upper right hand corner of the paper. This much we have to do. अब इसमें कितना समय लगना चाहिए? कितना समय? एक सेक। अभी आ रही हूँ आपकी बात पे, अभी आ रही हूँ। क्लियर हुआ? कितना समय लगना चाहिए? लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हमारे पर टाइम का प्रेशर होता है, क्योंकि लीडर का मतलब है जिसको चारों तरफ से प्रेशर्स आए, इसलिए आपको हम भी बीच बीच में प्रेशर दे रहे थे, है ना? हाँ, ये लीडर का मतलब है जिसको अभी देखो ये हमारी आईएएस ऑफिसर बैठी है ना बीच में, इनको चारों तरफ से प्रेशर्स आते होंगे, उसके बीच में मन को स्टेबल रखना। अगर नहीं प्रेशर्स आए फिर स्टेबल है तो क्या बड़ी बात है। प्रेशर्स आते हुए भी मन को स्टेबल रखना अवेलेबिलिटी बनाए रखना और चीजों को प्रायोरिटाइज करना कि पहले मुझे कौन सी चीज को प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है, ठीक है ना, वो सारा इसमें है। इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। तो अब आपने नॉर्मली क्या होता है जब हमें इस प्रकार का प्रेशर आता है, तो हम कहते टाइम तो बड़ा कम है, टाइम तो बड़ा कम है, हमारी हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्रेन रिदम, एवरीथिंग गेट्स इंक्रीज्ड, और अभी इतने टाइम में कैसे होगा इतना बड़ा पेपर। लेकिन आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस अगर हम पढ़ें तो उसके बीच में जरूर कोई बात होगी। तो पहले तो हम इस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद क्या करना है उतना करना, बस उतनी, उसी अवेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, हैं? हाँ, वो क्यों नहीं गए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात पूछी है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जब टाइम का प्रेशर होता है ना, तो हम कहते हैं भाई पहले तो सारा पढ़ो बाद में लिखो, साथ साथ काम निपटाते जाओ। अब साथ साथ हम निपटाते गए तो रिजल्ट क्या निकला, उल्टा हो गया ना, ऐसे होता है, ये सबकी टेंडेंसी है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जरूर इसमें कोई सीक्रेट है, हमें इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। लीडर्स कौन, अब आपका रोल चेंज हो रहा है ना, अभी आपका रोल चेंज हो रहा है, आप यहाँ से मैनेजर नहीं लीडर बन के जा रहे हैं। आप सारे जब यहाँ से जाओगे ना लीडर्स बन के जाओगे। नहीं नहीं, देखो ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही है, लीडर सारा पढ़ते हैं फिर प्रायोरिटाइज करते हैं चीजों को, फिर काम करते हैं, ठीक है, ये भी आपका आपका कहना जरूरी है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इस क्वालिटी को और बरकरार रखें और इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि वी जो लीडर्स हैं उनको हर जगह जिस समय जिस स्थान पर जितनी देर के लिए उनकी जरूरत पड़े वहां वो उपस्थित हो जाए, ये विशेषता होनी चाहिए लीडर्स की। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये देखना पड़ेगा कौन सी चीज पहले करनी है कौन सी चीज बाद में, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ही शुड नो हाउ टू डेलीगेट द वर्क। अगर आपने डेलीगेशन आपको नहीं आता है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि हर काम आप टाइम पे नहीं कर पाएंगे अकेले, डेलीगेशन बहुत अच्छा हो। और तीसरी बात ये है कि वी मस्ट बी अवेलेबल फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एज वेल। कई बार फिजिकली हम यहां हैं, मेंटली वी आर समवेयर एल्स, तो इसको अवेलेबिलिटी नहीं कहेंगे। बहुत फोकस्ड अटेंशन के साथ मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, तभी आप सामने वाले का भाव समझ पाएंगे कि इनके बताने का लक्ष्य क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। अभी आप देखेंगे जब जितने भाई बहने हमारे बैठे हैं यहाँ पे, स्पीकर अगर बात करता है उसकी बात तो हमें सुनाई दे रही है बाहर भी, लेकिन हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते, हम उठ उठ के देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं, कि उनके भाव लेना चाहते हैं कि उनके कहने का अर्थ क्या है। तो आप इमोशनली जब तक नहीं वहां होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तक आप अपने को अवेलेबल नहीं कर पाते, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू हैव अवेलेबिलिटी व्हाट एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड, बताइए। वी रिक्वायर एक्सेप्टेंस। अब छोटी सी बात है, आप में कुछ इफ्को के एम्प्लॉय हैं या दूसरे जगह से, कुछ सीनियर होंगे कुछ जूनियर हैं, ठीक है। अब या सीनियर हैं या कलीग हैं, और कंपटीशन कहाँ चलता है, जहां पर थोड़ा सा बराबरी होती है। अब किसी को यहां बुलाया गया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और आपके उसके साथ कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, आप कहते हैं इनको सारे इफ्को में से यही बंदा मिला था, 150 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, अरे ये हमारे बॉस को ही बुला लेते, इतना बढ़िया बोल देता वो, है ना। तो जब आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे, बैठे हुए भी बात को सुनेंगे नहीं, आप अवेलेबल भी नहीं रहेंगे। और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं बोलता है लेकिन आपके उसके साथ वेवलेंथ मैच करती है और जब वो बात करता है आप कहते हैं एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस है इसलिए आप वहां अवेलेबल है। ये बात ठीक है कि नहीं है? तो अवेलेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस का अर्थ ये है, एक्सेप्टेंस इज द पॉजिटिव एलिमेंट, सप्रेशन इज द नेगेटिव एलिमेंट। समझो दो कलीग आप आपस में काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से और आपको लगता है कि जो आपका साथी है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आप उसकी बात को एडजस्ट कर रहे हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप कहते हैं आई कांट टेक इट एनी लॉन्गर, इट्स टू मच, बहुत हो गया, अब या तो रहेगा ये और या रहूंगा मैं अपने बॉस को जाके शिकायत करूंगा कि मैं इसके साथ ज्यादा देर नहीं चल सकता। तो अब बताइए अभी तक जो आप रह रहे थे वो एक्सेप्टेंस था या सप्रेशन था? सप्रेशन था। और हमें क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जो है जैसा है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना, उसकी स्ट्रेंथ भी हम जानते हैं उसकी ड्रॉबैक्स भी जानते हैं, हम कोशिश करें कि उसकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में रिप्लेस करें। और अगर हम नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उसकी नकारात्मकता का असर अपने पर ना आने दें, हम अपना रास्ता चूज कर लें और बड़े कंफर्टेबल रहें। ये लीडर की क्वालिटी है। जैसे एक डॉक्टर है, कितना भी पेशेंट उसको प्रॉब्लम हो, पावरफुल वायरस हो उसके अंदर, कई ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज भी होते हैं, डॉक्टर्स प्रिकॉशंस लेके पेशेंट के पास जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाए प्रॉपर तो एटलीस्ट उनका उनका जो रोग का प्रभाव है वो अपने पर लेकर नहीं आते। तो हम दूसरों को ठीक करें न कि हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं, ये लीडरशिप क्वालिटी है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। आप ये करेंगे तो आपको बहुत ही सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। शुरू शुरू में लगता है कि इट्स डिफिकल्ट, बट ये बहुत इजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आदत बन जाएगी। सो इन ऑर्डर टू हैव एक्सेप्टेंस व्हाट एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर एडाप्टेबिलिटी। आपने देखा होगा कि नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और सागर में जाके गिरती हैं और रास्ते में बहुत सारे चट्टाने और बड़े हर्डल्स आते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता बनाते हुए कैसे भी करके वहां से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, गोल तक पहुंचती है। लीडर्स के रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे, लेकिन वो अपना रास्ता बनाते हुए अपने गोल तक पहुंचे, क्योंकि ही इज अ लीडर, उसको एग्जाम्पल सेट करना है। इसको कहते हैं अडाप्टेबिलिटी, समय स्थान और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने को ढाल लेना। लेकिन किस हद तक अडॉप्ट करना है, कहां अडॉप्ट करना है, कितना अडॉप्ट करना है, इसके लिए भी चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा एक फ्रॉग, नेचर की बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन है, उसके अंदर एक विशेषता है, वो अगर उसे वो वातावरण के हिसाब से अपने को अडॉप्ट करता चला जाता है। एक बार एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि फ्रॉग को एक बर्तन में पानी में डाल के स्टोव पे रख दिया गया और उसकी हीट को धीरे धीरे बढ़ाते गए और वो अडॉप्ट करता गया करता गया करता गया। एक समय ऐसा आया कि पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब उससे पहले उसे फ्रॉग को क्या करना चाहिए था, जंप आउट करना चाहिए था, बट उसने जंप आउट नहीं किया। उसके बाद वो करने भी चाहता था एंड में, तो उसमें क्षमता खत्म हो गई थी और वो ही खत्म हो गया। इसलिए हमें ये जरूर चेक करना है कि टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव टू अडॉप्ट, व्हेन टू अडॉप्ट, व्हाट टू अडॉप्ट, ये जरूरी चाहिए। कई बार हम घर में भी कोई ऐसी बात होती है, सहन करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, एक स्टेज ऐसी आती है कि घर में पता चलता है उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि अब उसके उसकी ताकत से बाहर हो गया। वेयर एंड व्हेन टू जंप आउट, ये विजडम भी चाहिए। कहां सिचुएशन से बाहर निकल के इसका सोल्यूशन मिलेगा, ये भी समझ चाहिए। कई बार उस सिचुएशन में रह के सोल्यूशन नहीं मिलता है, उससे अलग हट के सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, ये है अडाप्टेबिलिटी। अब इसके लिए कौन सा गुण चाहिए, कौन सा एटीट्यूड चाहिए कि वेयर एंड व्हेन टू जंप आउट, कौन सा चाहिए उसके लिए? उसके लिए चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। व्हेन टू अडॉप्ट, टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव टू अडॉप्ट, वेयर एंड व्हेन टू जंप आउट, इसके लिए चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, फॉल्स एंड या ट्रुथ, और परखने की शक्ति। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग अपनी मैनेजमेंट के कुछ सूत्र ऐसे भेजते हैं जो सिचुएशन का जायजा लगा के आते हैं, और उन्होंने आपको आके बताया कि सर वहां पर ये हो गया। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन मीन कोई भी इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ प्रोसेस से हमें गुजरना है, कलेक्टिंग, सेलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द थिंग्स। लीडर हैज टू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं है उसने आपको आके सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे दी और आपने डिसीजन ले लिया, नहीं। सारी चीज हमारे को साथ साथ चाहिए, तब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट गोज पैरेलल अलोंग विद डिस्क्रिमिनेशन सो दैट इट शुड बी फ्रूटफुली यूटिलाइज्ड। व्हाट गोज पैरेलल, यस, दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आप डिसीजंस नहीं ले गए। वैसे तो डिसीजंस ना लेना भी एक डिसीजन ही है लेकिन जो बोर्ड लीडर्स होते हैं वो डिसीजन जरूर लेते हैं, डिसीजंस को लिंगर ऑन नहीं करते राइट कई बार डिनाई करने के लिए आप डिसीजंस को पोस्टपोन करते हैं, कहीं कहीं डिनाई करना पड़ता है। लेकिन एक बार किसी एग्जीक्यूटिव को पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, उसने कहा कि मेरा माय सीक्रेट इज आई ऑलवेज टेक फ्रॉम डिसीजन, क्विक डिसीजन, ऑन द स्पॉट डिसीजंस। अच्छा, कहा हाउ यू स्टार्टेड टेकिंग दैट, कहता है बाय एक्सपीरियंस। बाई एक्सपीरियंस, उसने कहा हाउ यू गेन सच गुड एक्सपीरियंस, बाय टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। क्योंकि जब तक आप रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेंगे दो चार बार, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इससे मैंने कोई सबक सीखा है या पाठ पढ़ा है। इसे डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग लिंगर ऑन करते हैं तो हम बहुत सारी बातों के पीछे रह जाते हैं। ओके, नाउ अब आपके पास डिसीजंस आपने लिए, अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी लोगों के सामने आएंगे जब लोगों की फीडबैक आपको मिलेगी। और कई बार हम कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं झेल पाते तो हमारी पॉइंटिंग फिंगर दूसरे पर चली जाती है। परंतु हम इसके लिए डिसीजन मैंने लिए हैं तो कौन सा एटीट्यूड चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई हैव मेड ऑल डिसीजंस। उसमें पीछे नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया, ये अच्छे लीडर का गुण नहीं है। मैंने किया है, अल्टीमेटली डिसीजन मेरे द्वारा गया है, मुझे सजेशंस कितनों ने दिया हो, पास तो मैंने ही किया है ना, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ अ लीडर। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ऐसा कौन सा एटीट्यूड आप धारण करें जो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाए, कौन सा एटीट्यूड? अब आप देखिए यहां पर आप आए हैं, यहां पर हमारी दादियां तो बीच में नहीं है ना, मैनेजमेंट में क्या चीज ऐसी काम कर रही है, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, यस। पर आप अल्टीमेटली कहेंगे कि इनकी दादी, इनकी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कितने अच्छे हैं, कितना डिसिप्लिन, बिना किसी ऑर्डर पास किए सारा काम ऑटोमेटिक चल रहा है। क्रेडिट तो लीडर को ही जाता है, लेकिन उसके पीछे सीक्रेट क्या है, वो है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट, जैसे इनने कोऑपरेशन कहा, ठीक है। अगर मैं टीम नहीं बना पाई तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का क्या औचित्य है, कोई मतलब नहीं होता है इफ आई एम नॉट एबल टू क्रिएट टीम स्पिरिट। सो अब आप एक चक्रव्यूह में आ गए, टीम स्पिरिट के लिसनिंग चाहिए, लिसनिंग के लिए अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी के साथ एक्सेप्टेंस, एडाप्टेबिलिटी, देन डिस्क्रिमिनेशन, देन डिसीजन मेकिंग, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चक्रव्यूह है, ठीक है। एंड देर इज प्रोएक्टिविटी एंड देर इज इंटरएक्टिविटी ऑल्सो। प्रोएक्टिविटी तो बता दी, इंटरएक्टिविटी क्या है? अगर आप लिसनिंग है तो आप में डिस्क्रिमिनेशन आएगी, अगर आप अवेलेबल हैं तो अच्छे डिसीजंस लेंगे, आप में एक्सेप्टेंस है तो आप जिम्मेवारी संभालने का साहस रखेंगे, आप में अडॉप्टेबिलिटी है तो आप टीम स्पिरिट जनरेट कर पाएंगे। इज इट क्लियर यू टू ऑल? ओके, अब ये बताएं, अगर आप अच्छे लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं तो आप लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं, पर आप जस्ट मैनेजर हैं, लीडर नहीं हैं, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? पहला एटीट्यूड तो लिसनिंग है ना, हैं? डिसीजन मेकिंग है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, भाई साहब ने, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल सही कहा। कहेंगे देखो भाई, कोई भी काम हमसे पूछ के किया करो, हमने डिसीजंस लेने होते हैं, बाकी आप सिचुएशन का पता लगा के आइए, और आप थोड़ा ना फ्लेक्सिबिलिटी अपने में रखिए, आप एक्सेप्टेंस रखो, सारे काम आप करो और हम क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे। तो पहले हम क्लॉकवाइज जाते थे, लीडर थे तो क्लॉकवाइज, और अभी क्या है, लीडर नहीं होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अब कई कई हमारे भाई बोलते हैं, कहते दीदी ऐसा है कि जब ऑफिस में होते हैं तो हम क्लॉकवाइज जाते हैं, और जब घर में जाते हैं अपने स्पाउस के सामने तो क्या हो जाता है, तब तो एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो जाता है। तो अभी अपने आप को चेक करना है कि हम क्लॉकवाइज चलें, लिसनिंग, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, अडैप्टेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम स्पिरिट, तो हम एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। घर में तो लीडर वाइफ ही रहते, लेकिन आपको फायदा होगा, बहुत फायदा होगा आपको। अगर आप उनको लीडर बना के रखोगे ना तो आप निश्चिंत रहोगे। ठीक है, तो अभी इन सभी जो आप, इन सभी के पीछे एक एक शक्ति काम कर रही है, 8 पावर्स ऑफ राजयोग। ठीक है, इसमें लिसनिंग क्या है, पावर टू विथड्रॉ, और अवेलेबिलिटी पावर टू एडजस्ट, एक्सेप्टेंस पावर टू टॉलरेट, एडाप्टेबिलिटी पावर टू एडजस्ट यहां आएगा, डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर टू डिसाइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर टू फेस, टीम स्पिरिट पावर टू कोऑपरेट, और अवेलेबिलिटी में है पावर टू पैक अप, पहला पावर टू विथड्रॉ, लिसनिंग में पावर टू विथड्रॉ, सब तरफ से विथड्रॉ करके एक अपने आप से बैठेंगे तो आप दूसरे की बात को ध्यान से सुन पाएंगे। अवेलेबिलिटी पावर टू पैकअप, पैकअप समझते हैं ना, जैसे आपको ट्रेवल करते हैं तो पहले से बैग बैगेज पैक करके रखते हैं सो दैट कि आप टाइम पे पहुंच पाए, तो आपको सारा पैक करना है ताकि अंत में अगर हमें आ जाए ऊपर से इनविटेशन तो हम बिना सोच के जा सके। और इससे ही एक्सेप्टेंस है, टॉलरेंस पावर, एडाप्टेबिलिटी एडजस्टमेंट पावर, डिस्क्रिमिनेशन परखने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग निर्णय करने की शक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी सामना करने की शक्ति, और टीम स्पिरिट सहयोग शक्ति। ये 8 शक्तियां इस सब के पीछे काम कर रही हैं। लेकिन इनके 8 शक्तियां राजयोग की देन है। आप मेडिटेशन करेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे तो 8 पावर्स आप में आ जाएंगी और आपके कार्य क्षेत्र में ये एटीट्यूड काम करेंगे और आप एक सफल नेता, सफल लीडर बन सकते हैं, स्वयं को और अपनी संस्था को, अपने परिवार को, अपने समाज को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ आपको टोटल सेशन का समराइज करें तो एक शब्द आप याद रखें, वो है गणेश। गणेश, गणेश में 8 पावर्स थी, ठीक है ना। जो उनके कान हैं वो क्या है, लिसनिंग एबिलिटी, बड़े बड़े कान है ना, और एक है समाने की शक्ति जिसको एडाप्टेबिलिटी कहते हैं, जो बिग स्टोमिक है, कहते इसके पेट में बात नहीं समाती है, बात पेट की नहीं है, बुद्धि की है ना। तो आप में समाने की शक्ति आ जाएगी, कोई भी बात किसी ने कही आपने उसको समा ली। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, सहन शक्ति, कहते हैं जब हाथी चलता है ना तो मस्त मस्त चलता है, आसपास के जो डॉग्स हैं वो बहुत आवाज करते हैं पर उसमें इतनी टॉलरेंस पावर है कि उनकी परवाह नहीं करता है। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, पावर टू पैकअप, चूहा जो है उनका वाहन है और उसके अंदर ये विशेषता होती है कि जब वो काटता है वो फूंक मारता है, इट ग्लोज व्हेन इट बाइट्स, और आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा, जब वो इस प्रोसेस से अलग हो जाता है तब जाके आपको सीवियर पेन होता है। तो ऐसे ही हमारी छोटी छोटी कमजोरियां जो चूहे की तरह हमें अंदर ही अंदर काट रही हैं, जिसका हमें भी एहसास नहीं है, उसको अपना वाहन बनाना, उसे अपने अधिकार में रखना, उसको जीत लेना, ये है अवेलेबिलिटी, राइट। क्योंकि हम लोग क्या रहते, अपने साथ अवेलेबल नहीं रहते, इसलिए हम अपनी छोटी छोटी बातों पर एहसास नहीं करते, और अगर हमारा हितैषी हमें बताना चाहता है तो हम उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन, परखने की शक्ति आप देंगे, वो छोटी छोटी आंखें होती है ना उसकी, ऐसे चरता हाथी, उसमें फोर साइटेडनेस होता है, दूर से परख लेता है कि ये क्या है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। परखने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग, जो ट्रंक है, ट्रंक सूंड, वो क्या चीज उठानी है, मालिक को देनी है और क्या नहीं उठानी, वो डिसीजंस लेता है इस चीज का। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग। आपको बताया ना, जब जो कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जब वो डॉग्स आवाज करते हैं उसे अपनी शक्ति का एहसास है कि ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और अगर मेरे पांव के नीचे आ गए तो इनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, इसलिए वो निश्चिंत होकर आगे बढ़ते हैं। योगी भी किसी की बात में इन्फ्लुएंस नहीं होता है, केयर फ्री होता है, उनको मालूम है कि हमारा कोई सामना नहीं कर सकता, मैं अपने आप में सक्षम हूं। टीम स्पिरिट क्या है, उनका वाहन चूहा है, लेकिन उन्हें भोग लगाते हैं लड्डू का। लड्डू कैसे बनता है बताइए, पूरा पांच हाथ में पांचों जो फिंगर्स हैं वो जब इकट्ठी मिलती हैं तो लड्डू बनता है, ऐसे नहीं बन सकता। तो ये टीम स्पिरिट का प्रतीक है। तब कहते हाथी हमेशा झुंड में चलता है, तो हमको भी क्या करना है, अपनी टीम को बनाए रखना है, बिना टीम के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे गुण गणेश के अंदर है, इसलिए आध्यात्मिक जगत का गुरु उसको मानते हैं, क्योंकि पहले आद गणेश को का ध्यान करो जब भी कोई काम करो। यहाँ कॉरपोरेट वर्ल्ड में कौन आगे बढ़ेगा, जो सिस्टम को फॉलो कर इन एटीट्यूड्स को अपने जीवन में लाएगा और शक्तियां धारण करेगा, इसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। सो विद दिस आई विल एंड दिस सेशन, आपको हम थोड़ा सा मेडिटेशन कराएंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये तो इन्होंने ये बात कर दी कि सारे डॉक्टर बन गए तो मरीज कौन रहेगा, सभी डॉक्टर बनते नहीं है, सभी डॉक्टर बनते नहीं, डॉक्टर बनने वाले ये बोलते नहीं है, सभी लीडर्स बन नहीं सकते, लीडर बनने वाले प्रश्न नहीं पूछेंगे। लीडर्स कितने भी हों, इट हार्डली मैटर, लीडरशिप क्वालिटी है, इट्स अ क्वालिटी। ये नहीं है, हमने पहले ही आपको बताया कि लीडर का मतलब यूनियन लीडर या पॉलिटिकल लीडर से नहीं है, इसलिए यहां कोई फाइटिंग एंड क्वारलिंग की बात नहीं है। कोई भी क्वालिटी, ये जो क्वालिटी है ये अपने अंदर हम धारण कर लें, और जितने लोगों में आता जाएगा हमारा टीम और बढ़ता जाएगा। तभी तो आपको अभी सारिका बहन ने क्या सुनाया कि हमारी संस्था में लीडर्स तैयार किए जाते हैं ताकि आप अपने जैसे और लोगों को तैयार कर सकें। एक्चुअली लीडर्स में प्रॉब्लम नहीं आता है, जिनकी फाइटिंग टेंडेंसी है उनमें प्रॉब्लम आता है। लीडर्स तो फाइट करते ही नहीं है, दे आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल, दे आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, दे सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अदर्स, राइट। वो तो उनमें डिविनिटी है, उनके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण है। लीडर तो उन्हें पब्लिक बनाती है, वो खुद थोड़ी बनते हैं, उनमें वो क्वालिटी है, लोग उन्हें दिल से एक्सेप्ट करते हैं। जहां हम खुद अपनी सीट लेना चाहते हैं वहां झगड़े की बात है, आपको लोगों ने दिल से चुना है। अब मैं कल इफ्को में देख रही थी, छोटी सी बात मैंने नोटिस किया, अब 10-15 लोग एक एक यूनिट से आए हैं, तो हमने कहा आप में से एक हमें कोऑर्डिनेटर चाहिए, आप लीडर को कोऑर्डिनेटर कहो। अपने आप सबने कहा दीदी हमारे यूनिट से ये रहेंगे। आप कोई आप में वो थोड़ी था कि तुम क्यों रहोगे तो हम क्यों नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा वो व्यक्ति कोऑर्डिनेट अच्छा करता है, आपने उसको आगे ला दिया। ऐसे ही लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। लीडर्स अगर डिक्टेटर बनेंगे ना तो वो लीडर रह नहीं पाएंगे। अगर वो डिक्टेटर बनने लगे तो वो लीडर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि पब्लिक भी आजकल बहुत स्मार्ट है, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो राइट है, वो जो डिक्टेटरशिप है ना, वो तो मैंने बताया वो अमेरिकन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट में आता था। व्हेन यू पुट द हार्ट इन टू द बिजनेस, इसमें वो चीज नहीं है। अब देखिए ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या है, ब्रह्मा कुमारी इसमें संस्था भी है और फैमिली कल्चर भी है। दिस इज ए फैमिली, ये नहीं है कि मेरी छोटी सिस्टर है सारा काम वही करेगी, वो मैं भी कर सकती हूँ। इट्स अ फैमिली, मैं उसको कहूंगी आपने बहुत सेवा की है, आप रेस्ट करो, आप निश्चिंत रहो, अब हम करेंगे। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि उसको ही करना है, वो भी तो थक सकती है। तो जब हम दूसरे के दिल को जीत लेते हैं तो ही तो आपको अपना लीडर मानेंगे, नहीं तो कैसे मानेंगे वो, ठीक है ना। तो हमें एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। कल हम किसी कोई बहन हमको पूछने लगी कि दीदी अगर ये नहीं करें काम आप इनको बता के जाओ फिर मैं क्या करूंगी। मैंने कहा प्यार से बताओ, नहीं करते तो आप कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई ज्यादा समय थोड़ी लगता है। ये तो हमारी सोच है ना कि टाइम लग जाएगा, इतने में तो काम ही हो जाता है। नहीं, लीडर के आगे बैड शब्द आएगा नहीं आएगा। हमने आपको पहले बता दिया कि लीडर में ऐसी वैल्यूज होंगी, इसीलिए उसे लीडर बनाया गया। आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसके लिए हमें आध्यात्मिक इनपुट जरूरी है। अगर आप आध्यात्मिक इनपुट, जैसे कल हमने बताया ना, अभी बताया था कि मॉरल क्वेश्चन्ट तो लोग चाहते हैं, लेकिन उससे आगे है स्पिरिचुअल क्वेश्चन्ट। जब आप में स्पिरिचुअलिटी आ गई ना तो ये सब डिसवैल्यूज नहीं आएंगी। इसका मतलब उसे स्पिरिचुअलिटी का रेगुलर इनपुट नहीं मिल रहा है। आप देखिए, जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल है, आपको भोजन शरीर को दुरुस्त रखने के लिए तीन चीजें चाहिए, डाइट एक्सरसाइज एंड रेस्ट। क्या चाहिए? डाइट एक्सरसाइज एंड रेस्ट। आत्मा को भी तीन ही चीजें चाहिए, डाइट एक्सरसाइज एंड रेस्ट। अब ये जो अध्यात्म का इनपुट है या पॉजिटिव थिंकिंग है, ये हमारी न्यूट्रिशियस डाइट है और हम इसको रोज लें। एक्सरसाइज क्या है? मेडिटेशन हमें एक्सरसाइज भी देता है और रेस्ट भी देता है। मेडिटेशन करने से आपके थॉट्स काम डाउन हो जाते हैं, आपको एकदम रेस्ट मिलता है। और एक्सरसाइज क्या है? इससे माइंड फ्लेक्सिबल बनता है, रिजिडिटी खत्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, एक्सेप्टेंस बढ़ती है। किसी ने कह दिया ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, और हम देखते हैं कि ठीक है इसने कह दिया पर इससे कोई नुकसान नहीं है, तो हम कहते जरूर ऐसा कर लेते हैं, वो रिजिड नहीं होगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ ये बात? यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपने भोजन, डाइट एक्सरसाइज रेस्ट में कुछ चीज आप मिस कर रहे हैं तो आपकी रेजिस्टेंस पावर वीक होगी और आप वायरस अटैक करेगा। इनमें से भी तीन चीजों में से कोई चीज मिस हो गई, आपका मेडिटेशन मिस होता है, आपकी रेगुलर पॉजिटिव इनपुट नहीं ले रहे, आप ज्ञान नहीं सीख रहे हैं, तो आपका मिस हो गया, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। और बाहर का वायरस अटैक करेगा, दैट मीन डिसवैल्यूज आ जाएंगे, इसलिए वो जरूरी है। इट शुड बी कॉन्स्टेंट। अब बताइए आप। शायद आपने जब हम बता रहे थे लीडर की बात तो आपका ध्यान कहीं और चला गया होगा। हमने आपसे ये कहा कि लीडर का मतलब कोई डाकुओं का लीडर, पॉलिटिकल लीडर, यूनियन लीडर से नहीं है। आप शायद भूल गए, है ना? भूलना नहीं है हमको। लीडर इज वन हु कैन बी द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल। है? हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए हमारा जो एटीट्यूड रहता है ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अगर आप अच्छे बनना चाहते हो तो आप उन लोगों को कोट करो जिनमें वैल्यूज हैं। मैंने ये बात अपनी सीनियर बहन से सीखी थी, बड़ी अच्छा मुझे लगा और मैं अपने जीवन में इसको अपनाती हूँ। उन्होंने ये कहा कि एक क्लास में बच्चा जो है वो 98% मार्क्स लाया है या डिस्टिंक्शन में आया है जो भी, तो वो घर आके बताएगा मम्मी एग्जाम तो बहुत टफ था लेकिन 15 लोगों ने इतने परसेंट मार्क्स लिए और मैं भी उनमें से एक हूं। तो उसने इतने सारे लोगों में से 15 लोगों का नाम क्यों लिया? क्योंकि वो उसमें से एक है। अब दूसरा बच्चा जो फेल हो गया वो क्योंकि बड़ा टफ एग्जाम था, आउट ऑफ सिलेबस था, उसमें से 85% लोग जो है ना फेल हो गए। अब मैं भी कौन हूं? फेल हूं। कहने का मतलब मैं मिसाल क्यों दे रही हूं? क्योंकि मैं खुद फेल हूं। तो जो जैसा होगा ना वही एग्जाम्पल देगा। अगर मुझे मैं अच्छी बनना चाहती हूं तो इन सब में से जिनमें अच्छी अच्छी बातें ना मैं वही कोट करूंगी। 90 बातें अगर उनमें अपने हिसाब से हैं, एक बात मेरे हिसाब से है, मैं बस एक ही बात कोट करूंगी कि ये वो भाई में ये बात बड़ी अच्छी थी। क्योंकि मैं क्या बनना चाहती हूं? अच्छा बनना चाहती हूं। ठीक है? जो आप दूसरों के लिए प्रोजेक्ट करते हैं ना वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है। जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरों के लिए वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है। इसलिए हमें अपनी पर्सनैलिटी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इट इज वेरी क्लियर। हर तरह के बच्चे मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। हमने अपने आप को डिस्टर्ब थोड़ी करना है, हम प्यार से समझा ही सकते हैं। समझे बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे बहुत अच्छी बात है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना। राइट? करेंगे पक्का? हाथ उठाओ। हाँ, कौन कौन करेगा? कैन यू रेज योर हैंड्स? यस, थैंक यू वेरी मच।
अब उस ईगो में क्या होता है कि क्योंकि एज ए लीडर मुझे उनके साथ काम करना ही है और कुछ कमियां जो उनकी है उनको दूर भी करना है, क्योंकि प्रोडक्ट आफ्टर ऑल मैं लीडर हूं तो मेरी प्रोडक्ट नहीं असर करता। तो मैं उसको हंसते होते मतलब काम करवाऊ कि वो कमियां भी दूर हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि वो कमी है, शायद वो ईगो के कारण
देखिए हम जब किसी से कोई बात करते हैं ना और कोई बात बताना चाहते हैं तो पहले हम उसकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें कि देखो आप में इतनी क्रिएटिविटी है, आपने इतने इनोवेटिव आइडियाज दिए हैं, उससे कितने लोगों की दुआएं आपको मिली हैं, आपको परमात्मा ने चुना है, हैं? तो इसमें हमें गॉड की ब्लेसिंग्स फील करनी चाहिए कि अगर वो हम में इतनी काबिलियत न भरता तो हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। और ये काबिलियत हमें बरकरार रहे, उसकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, उसके लिए हमें अपने आप को सरेंडर करके काम करना है, ये सोच के नहीं कि मैं कर रहा हूं। पहले आप उसको थोड़ा ये बताएं, उसके बाद उन्हें बताएं कि अगर ये चीज और आप में ऐड हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसको और ऐड कर लें। ऐसे नहीं है कि हम कोई डिक्टेटरशिप चलाएं, ऐसा नहीं। हर एक में गुण होता है, हम तो स्ट्रेंथ हाईलाइट करते हैं, और हर एक में है भी। और फिर ईगो खत्म हो जाएगा उसका। क्या कह रहे हैं? नहीं सुनाई दिए। चलो मसाज करने से अगर वो थोड़ा सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इट इज टोटली वैनिश्ड, तो ठीक है ना। बस ऐसा नहीं होता है। जब आप आध्यात्मिकता को साथ लेकर के चलेंगे तो उसको समझ में आ जाता है कि मुझे अपने गुणों को कैसे यूज करना है। यही तो अंतर है। आध्यात्मिकता आने से यही तो चेंजेस आते हैं। आप देखो आजकल हमारे पास लोग मेजॉरिटी जो क्लासेस करने आ रहे हैं ना, वो अपने बच्चों के कारण आ रहे हैं। वो कहते हैं दीदी हमारी लाइफस्टाइल तो जो है, हमने गलतियां की हैं, वो तो हो गया। आगे की जो हमारी जनरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए, हम इसलिए उनको यहाँ ला रहे हैं। नहीं तो स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं ना, पर यहाँ एटीट्यूडनल चेंज आता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। ये हम इम्पोज नहीं करते। कोई चीज आप किसी पर इम्पोज करोगे तो थोड़े समय बाद वापस यू रिवर्ट बैक टू द ओल्ड बिहेवियर। लेकिन अगर आप उन्हें समझा करके ज्ञान से, तब आप उसको परिवर्तन लाते हो तो वो कॉन्शियसनेस लेवल का चेंज आता है, एंड दैट इज द फंडामेंटल चेंज। ठीक है? ओके। अभी हम मेडिटेशन करें? क्योंकि हमसे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, अध्यात्म का इनपुट हो रहा है, और मेडिटेशन करो। दिस इज द रेमेडी है, यही चाहिए ना, है ना? तो अभी हम बैठेंगे साइलेंस में, थोड़ा सीधे होकर के बैठे। आप दृष्टि को सीधा भी रख सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। थोड़ी देर के लिए स्वयं को इस बाह्य वातावरण से दूर कर लें। अंतर जगत की ओर देखिए। स्वयं को रिफ्लेक्ट करें। बहुत सुंदर मौका है अपने आप को देखने का। जानने का अपने पास्ट में ट्रेवल करें, उस समय में स्वयं को ले जाए। जब आप छोटी छोटी बातों पर इमोशनली हर्ट हो जाते थे, रिएक्शन में आते थे, परंतु आज मुझे ज्ञान मिला, हम सभी आत्माएं अभिनेता बनकर इस मंच पर अभिनय करने आई है। हर एक एक्टर अपना अपना रोल अदा कर रहा है। इसलिए हर एक के पार्ट को देखते हुए साक्षी दृष्टा बनकर रहना है। साक्षी भाव, जजमेंटल नहीं। जो पार्ट जिस आत्मा को मिला है वह अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। मेरा रोल डिफरेंट है, आई एम अ पीसफुल सोल। मुझे अपनी शांत स्थिति में स्थित रहना है। लीडर बनकर सबके समक्ष एग्जाम्पल सेट करना है। मेरी काम स्टेट ऑफ माइंड हो, मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर हो, तभी मैं कॉन्फिडेंट हो सकती हूँ और कमिटेड भी। धीरे धीरे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती रहेगी। और मैं अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, समाज को अपनी रचनात्मकता के द्वारा सुंदर उपहार दे सकती हूँ। कितनी सुंदर स्थिति है, कितना हल्कापन, कितनी न्यारी और प्यारी अवस्था है। मेरी इंट्यूटिव पावर डिस्क्रिमिनेशन पावर डिसीजन मेकिंग पावर उच्च सर्वोच्च सत्ता के साथ योग लगाने से बढ़ती जा रही है। मन भरपूरता का अनुभव कर रहा है। मैं अपने आप को कंटेंटेड फील कर रही हूँ। रिचार्ज्ड और संपन्न स्थिति का अनुभव अपने शक्तिशाली प्रकंपन के द्वारा आसपास के एटमॉस्फेयर को वातावरण को चार्ज कर रही हूँ। यही मेरी बेसिक ड्यूटी है, कर्तव्य है। मैं इसे निभाती रहूंगी। ओम शांति।